శ్రీ చైతన్య మనోభిష్టం స్థాపిత నిజే మరియు స్వయం రూప కదా జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యాన శ్రద్ధ కదా శివాస హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే.
ఫైనల్ సెక్షన్ ఇస్ చాప్టర్ కా జో హై వో అభి తక్ కి జో బాత్ హుయి హై ఉసీ కా సమరి కే రూప్ మే హై జిస్మే क्षेत्र में से क्षेत्र को अलग किया जा रहा है. किसी को ठंड नहीं लग रहा है तो क्षेत्र एक बार जस्ट समराइज. क्षेत्र किसे कहते हैं? रेज योर हैंड देन आई कैन फोकस. हाथ उठा लो फिर बात. यस ठीक है. और
भौतिक जगत से तो शरीर क्षेत्र है.
ओके आप क्या कह रहे हैं?
शरीर
क्षेत्र. आप कुछ कह रहे हैं? ओके शरीर.
इसमें थोड़ा ऐड करें तो जो भी स्पेयर ऑफ एक्टिविटी है जहाँ भी आप शरीर एसेस के बाहर भी जो भी आप कर्म कर रहे हो वो क्षेत्र ही है.
ओके फील्ड ऑफ एक्टिविटी और क्षेत्र दिया
शरीर के लिए आत्मा क्षेत्र
और परमात्मा
शरीर का क्षेत्र.
ओके इज दैट एनी कंफ्यूजन इन दैट? क्षेत्र आत्मा भी है और परमात्मा भी है और आत्मा और परमात्मा एक ही है? अच्छा अलग अलग
है.
अच्छा अच्छा तो आत्मा और परमात्मा अलग अलग है क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा एक नहीं है. ये इसका की पॉइंट है इस चैप्टर का. ये 13वें अध्याय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि 99% लोग यहीं अटक जाते हैं. आत्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं. सो यस यस हाँ ये पूरा वैष्णव सिद्धांत इसी प्रकार से है. और ये रूप से देखा जाए तो ये केवल वैष्णव सिद्धांत ही नहीं, ये भगवान के द्वारा स्वयं अपने मुख से बोला गया वाक्य है. तो इसलिए इससे ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं. दिस इज फाइनल अथॉरिटी. अभी ये जो कह रहे वही सही. इसके अलावा जो कुछ भी है अज्ञान मतम ममा भगवान ने बताया ना. ये जो कुछ भी है इसके अलावा जो कुछ भी है कितने लक्षण थे उसमें 20 कितना थे 20 चीज. ये 20 के अंदर जो कुछ नहीं आता है वो सब अज्ञान है. फिर आप चाहे किसी को भी ले आओ वो सब अज्ञान है. भगवान इसको स्पेसिफाई कर दिया क्लियर. सो टेक्स्ट नंबर
27. हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ ये जान लो कि चल तथा अचल जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है.
हाँ जो कुछ तुम देख रहे हो वो क्षेत्र या क्षेत्र का संयोग मात्र है. अर्थात दो ही चीज संभव हो सकता है, या तो जड़ पदार्थ या तो चेतन पदार्थ. दो में से कोई एक ही हो सकता है आप जो अनुभव कर रहे हो. राइट ये समझ लो कि आप इस घर में हो तो ये घर में इस कमरे में जो हम कुछ देख रहे हैं वो सब जड़ पदार्थ है, पंचमहाभूत से बना हुआ. तो वो क्षेत्र के रूप में आ सकता है. और जितने भी आत्मा है जो अगर मैं आत्मा हूं जितने भी चल है जो भी चेतन वह है वो सब एक क्षेत्र किया. अभी ये कमरे का क्षेत्र कौन है? ये कमरे ये 15 नंबर का रूम है इसका क्षेत्र कौन है?
इसके पास चाबी रहती है, कंट्रोलर है इसका.
ओके और इसका क्षेत्र कौन है?
प्रेसिडेंट
है. यस और अगर हम इसी चैप्टर को आधार लेकर करें तो
अभी फिलहाल हम सब है.
हाँ यही चैप्टर में जो हम सुन रहे पढ़ रहे इस कमरे का क्षेत्र कौन है? क्योंकि हमने तो अभी हमने आपको पूछा कि क्षेत्र का किसे कहते तो आपने तो मुझे दो ही चीज बताई.
भगवान
यहाँ बैठे थे तो हम भी है
क्षेत्र के ऊपर जो समझा है कि जो उसके बारे में सब कुछ जाने,
सही बात है।
अब हमें से तो शायद ही कोई इसके कमरे के बारे में सब कुछ जानता है।
हाँ, तो फिर कौन बचा?
तो जो मालिक इसके आएंगे बचा।
अच्छा, मालिक, मालिक को भी शायद पूरा पता है कि नहीं, तो कौन बचा?
सबके मालिक
परमात्मा। अर्थात या तो आत्मा क्षेत्रज्ञ हो सकता है या परमात्मा क्षेत्रज्ञ हो सकता है। तो अभी तक हम जो चर्चा किया उसमें जब आत्मा क्षेत्रज्ञ होता है तब उसका क्षेत्र कौन सा होता है?
जिस क्षेत्र में वो रह रहा
है। जिस क्षेत्र में वो रह रहा होता है। और अधिकतर केस में इस चैप्टर के अनुसार वो कौन सा क्षेत्र बोला गया है, कौन सा क्षेत्र बोला गया है?
शरीर।
उसका शरीर। और परमात्मा के लिए जो क्षेत्र है वो कौन सा है? सारा क्रिएशन, सारा सृजन, सारा ब्रह्मांड। तो ये कमरा भी अगर अल्टीमेटली देखोगे तो परमात्मा क्षेत्र में है इस कमरे के, क्योंकि ये ब्रह्मांड का ही एक अंश है। हम ठीक है, आप थोड़ा उपलब्ध दृष्टि से देखोगे, थोड़ा हायर अंडरस्टैंडिंग से, तो ये पूरी सृष्टि आप खिड़की से बाहर जो देख रहे हो, ये सारी सृष्टि का एकमात्र क्षेत्र में है परमात्मा। सो जो कुछ अर्जुन तुम देख रहे हो दिस इज जस्ट कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन कब हुआ है? कब हुआ है? टाइम इमेमोरियल,
अनादिकाल।
इसका कॉम्बिनेशन, क्षेत्र और क्षेत्र का जो कॉम्बिनेशन है वो कब से हुआ है इसका कोई डेट नहीं है। कौन सी तिथि भी थी कुछ है नहीं, कौन से बार हुआ था ऐसा कुछ नहीं। तो दिस कॉम्बिनेशन, इसलिए नाउ नेक्स्ट वर्ड्स में, नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें भगवान उनका व्यक्तिगत अस्तित्व के विषय में बात कर रहे हो। पढ़िए।
जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर को भी नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है।
हाँ, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि व्यक्तिगत आत्मा परमात्मा के साथ सबके हृदय, आई मीन परमात्मा सभी व्यक्तिगत आत्माओं के हृदय में रहता है, और जो इसको समझता है वही वास्तव में देखता है। और ये परमात्मा जो अंदर है और ना ही आत्मा, इसका नाश हो सकता है, वही वास्तव में देखने वाला है। अर्थात इन अदर वर्ड्स धीर सत्रनम हुयति, धीर पुरुष जो है वो इससे परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा का भी नाश नहीं हो सकता है और परमात्मा का भी नाश नहीं हो सकता है, परमात्मा के टुकड़े नहीं कर सकते।
प्रश्न किया था मैंने से कि जिनमें हृदय नहीं होता उनमें परमात्मा रहते या नहीं रहते, तो ये श्लोक उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं।
yes.
कि शरीर है, शरीर में रहेगा, हृदय वो नहीं होगा। अगर बिना हृदय का भी शरीर कोई है जिसके हृदय नहीं है तो भी परमात्मा होगा उस शरीर।
हाँ, अगर कोई साइंटिस्ट है,
कुछ प्राणी है जिनमें हृदय नहीं होते, कई प्राणी है जिनमें हृदय,
लेकिन उसके हृदय आइडेंटिफाई नहीं हो पाया।
आइडेंटिफाई नहीं होते। या जैसे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गन्स जो होते हैं ना, एक कोई ऐसे वैज्ञानिक वर्ग से बात कर रहा था कि आपका अगर हृदय नहीं रहते हैं, हृदय रहे नहीं वहाँ, उसके टुकड़े कर दो तो वहाँ का परमात्मा तो हजार टुकड़े करो तो उतने टुकड़े बन जाएंगे। तो बिना हृदय के भी, इसीलिए क्या सर्वे से भूत है सभी प्राणियों के
अंदर,
हृदय है तो ठीक है, नहीं है तो
मिस कहने का अर्थ है देहधारी कोई भी है,
शरीर है
उसके अंदर परमात्मा रहता है,
चेतना वाला शरीर है, चेतन शरीर है जिसके अंदर आत्मा है
उसमें परमात्मा रहता है। मिस एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि आत्मा के साथ परमात्मा कहीं पर भी जा सकता है? मैं कहा कहीं पर भी जा सकता है। बोले स्टूल का कीड़ा है उसके साथ, हाँ परमात्मा उधर भी जा सकते हैं, तो परमात्मा कहीं पर भी जा सकते हैं। आप हम लोग यहाँ पर इतने कंफर्टेबली बैठे हैं, लेकिन स्टूल का कीड़ा तो कितना डिस्कम्फर्ट में है, मल का कीड़ा, और ये तो अहमदाबाद जैसी कहीं ऐसी जगह भी होती है जिसको आप सपने में भी जाना अच्छा नहीं लगता आपको, इतनी गंदी जगह होती है, उधर भी जो जीव होते उसके साथ परमात्मा रहते हैं।
प्रभु जी स्थिति तो हमारे सापेक्ष है कि वो परेशानी में है, वो खुद हो सकता है बड़े कंफर्ट में,
वो चाहे कंफर्ट में हो या नहीं हो, लेकिन परमात्मा उसको छोड़ते नहीं है। ऐसा कौन
प्रभु जी, ब्रह्म संहिता में तो है कि शरीर तो छोड़ो तो बड़े बड़े स्थूल है, परमाणु के अंदर भी वो रहते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चरांतरस्थ, जैसे परमाणु के अंदर होंगे तो फिर तो हर जगह मिलेंगे।
सब जगह प्रपत कह देते ना, सब हमारे शरीर में सब जगह है, कई सारे आत्मा है शरीर के अंदर। एक्चुअली हम तो हमारा आत्मा तो एक ही है, लेकिन इतने सारे जीव गिटा होते हैं, एक शरीर का शरीर उसका आश्रय स्थान है और उधर रहता है। तो ये जो इसलिए भगवद गीता में सेकंड चैप्टर में कि वो आत्मा जो है सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी का अर्थ ये नहीं होता है कि वो भी विष्णु बन गया, सर्वव्यापी का अर्थ होता है कि वो सब जगह है, इस कमरे में भी हजारों है, लाखों करोड़ों है, एक शरीर में भी बहुत सारे, सो मेनी सोल्स आते हैं। होता है कई बार ऐसा, मैं अभी एक्चुअली रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दिया था कि मैं एक गिलहरी को देखा था, आई गिव यू दैट एग्जांपल ना, तो गिलहरी को देखा था तो उस समय भी मुझे मन में विचार आया था कि गिलहरी उसको उसका भी फीलिंग विलिंग सब कुछ होता है, वो भी किसी जन्म में मनुष्य रहा होगा और उसका भी सब प्रकार से कैसे पूरा लाइफ का हिस्ट्री होगा, लेकिन आज एक छोटी सी तुच्छ गिलहरी है जिसको कोई देखता भी नहीं है, तो क्या होता हम भी कभी गिलहरी बने होंगे। सो लाइक दैट, बट स्टिल परमात्मा नेवर गिव्स हिम, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। सो टेक्स्ट नंबर 39,
जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान दिखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को प्रश्न नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है।
सो परमात्मा यदि भी सब जगह है, लेकिन उनका पतन नहीं होता है, वन हू सीज द सुपर सोल इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी लिविंग बींग, अर्थात परमात्मा को सब जगह जो देखता है सभी जीवात्मा के अंदर, उसका पतन नहीं होता है और इसलिए वो आध्यात्मिक गंतव्य स्थान को प्राप्त करता है। तो इसके जैसे एक पांचवें अध्याय में एक श्लोक था, सुनी चाहिए सपा के चा क्या है इसका अर्थ, क्या है इसका अर्थ क्या है,
सभी जीवों के अंदर परमात्मा का
अंश है, इतनी विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, विद्या विनय ब्राह्मण अगर्य उन्हें गाय, गरीब को ये भी कहा जाता है जो चलते हुए जानवर है, छत दी थी लोग कहकर बोलते हैं कि जो गतिमान होते हैं जानवर उनको गाय के रूप में आते हैं, कभी हस्त या हाथी पशु नीचे के मतलब जो श्वान है वो पशु का के कुत्ते को मार के खाता है, जैसे नागालैंड के लोग पंडित संघर्ष, जो जो बुद्धिमान व्यक्ति पंडित लोग होते हैं वो उनमें समान दृष्टि रखते हैं, उनमें भेदभाव नहीं करते आत्मा की दृष्टि से।
दैट इज ऑल प्रॉपर से, दैट इज समदर्शी, वो सबको एक समान रूप से देखता है। प्रभुपाद एग्जाम्पल के रूप में बताया कि सारे मटके एक ही मिट्टी से बने होते हैं, सेम ब्लड सेम मसल सब कुछ सेम ही होता है अंदर, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, दैट्स ऑल। उस विचार से हमें अपने आप को तैयार करना, बट दिस रास्कल्स आर थिंकिंग आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन, आई एम ब्राह्मण, आई एम क्षत्रिय, आई एम फैट, आई एम दिस, आई एम दैट, इसलिए वो लोग प्रॉब्लम है। सो टेक्स्ट नंबर 29 में हमने सुना कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करता है, राइट, आध्यात्मिक, तो इसलिए वो भक्त स्वयं भी डिस्टर्ब नहीं होता और किसी का द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा के, किसी को ब्लेम नहीं करता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कोई व्यक्ति, तो हमने उसकी अज्ञानता को बताया दोष, उसका दोष नहीं बताया, और कई बार कोई व्यक्ति हमारे पास आकर के हमारे साथ मिसबिहेव करता है तो आप सोचते हो कि उसके हृदय में भी परमात्मा तो बैठे ही है, तो मैं अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा हूँ, उसमें उस बिचारे का क्या दोष है। बहुत मुश्किल है ये समझना व्यवहारिक जीवन में। ये आप किसी व्यक्ति के कारण अगर आपको कोई नुकसान हुआ है उस समय अगर आपको संभलना है, अपने आप को संभालना है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके मन में एकदम क्लियर है इसी व्यक्ति के कारण मुझे नुकसान हुआ है। आपके मन में एकदम क्लियर है ये बात, इसी व्यक्ति के कारण मुझे नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरा माइंड आपके अंदर, हृदय के अंदर दूसरा विचार ये आता है कि शास्त्र कहते हैं कि मुझे उसको ब्लेम नहीं करना है, मुझे उसको ब्लेम नहीं करना है, उसके कारण नहीं हुआ। तो ये अवस्था तब आ सकती है प्रैक्टिस के माध्यम से कि आपके मन में वो जो आती है ना विचार कि वास्तव में इसी के कारण हुआ है, वो जो विचार आता है ना वो पर्सनल लेवल पे, तो वो विचार भी नहीं आएगा। दैट इज अवर प्रोग्रेस। हाँ बोलिए।
इसी को जब विश्वकर्मा को सर सैया पर लेटाने के बाद अकेले में जाकर पूछा महाभारत में जिक्र आता है, उन्होंने कहा कि देखो मैंने आपको धोखे से करके ऐसे मार दिया और मैं बहुत ग्लानी में थी। तो विश्वकर्मा ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तो ढाल थी, जो सहनी के रूप में ढाल थी, हम उस ढाल को नहीं तोड़ पाए। मेरे पास ढाल थी कि मुझे कोई मार नहीं सकता, लेकिन मैं मरना नहीं चाहूंगा। और जब दोनों की ढाल बराबर हो गई, पल्ला बराबर हो गया, तो आपने बिगड़ा दिया। तो मेरे ही अपनी प्रतिज्ञा का फल है।
लेकिन वो मन में एक बार भी मन में विचार नहीं आता है, दैट्स द पॉइंट। यस, आप कुछ कह रहे थे।
ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था पिछले कुछ मतलब लास्ट वीक में, तो उस टाइम बहुत चार दिन तक कंटिन्यू टीचिंग हो रहा, लेकिन बाद में यही कहा लगा कि मेरा कुछ उन लोगों का मैंने शायद मेरे कर्म कुछ ऐसे हो गए जिसकी वजह से वे लोग मेरे साथ ऐसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो जब ऐसा मैंने सोचा तब मेरा मन शांत हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरे ही कर्म की मैं सजा भुगत रहा हूँ तो भुगतना ही है, तो मैं फिर निष्क्रिय हो गया।
तो वो चार दिन के पहले ही कुछ आपका प्रगति हो जाएगा आध्यात्मिक, तो फिर वो चार दिन नहीं जाएंगे आपके, और पहले दिन से ही हो जाएगा वो मन में, यू नो। तो ये हमारा जब प्रगति हो जाएगा या हम आध्यात्मिक रूप से थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, तो फिर वो पहली ही बार में हमारे मन में यही विचार आएगा कि उसका कोई दोष नहीं है, इट्स ऑल माई प्रॉब्लम, इट्स ऑल माई फॉल्ट, यू नो। पहले से वो इस तरह से मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि आपके मन में एकदम क्लियर है कि 100% प्रूफ है मेरे पास कि इसका ही दोष है। स्टिल
वो चार दिन इसी में ही गए थे, उनका फोन और मैं सत्य की ओर तो भी थी क्यों, बाद में अंदर से प्रेरणा होगी।
हाँ, वो परमात्मा का काम हो गया।
राइट,
वेरी गुड, नाइस। सो तो वो किसी को ब्लेम नहीं करता वो व्यक्ति, और निंदा भी नहीं करता, क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स, क्रिटिसिज्म का अर्थ ये नहीं होता है कि प्रभुपाद जी क्रिटिसिज्म करते थे, लेकिन वो क्रिटिसिज्म आध्यात्मिक रूप से अनुकूल होता था। क्रिटिसिज्म इसका अर्थ, अगर कोई व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है, संस्था का अपमान कर रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज करना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। कोई मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का निंदा कर रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि अगर अमित प्रभु को प्रेमिला से प्रीच कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि मेरे में अपने में तो कोई क्वालिटी है नहीं, मुझे कुछ आता तो है नहीं, तब क्या होगा अगर प्रेमिला प्रभु को अच्छा आता है तो अमित प्रभु अगर आप उनसे बात करोगे तो मेरी से दुकान बंद हो जाएगी, यहाँ से कोई आएगा नहीं खरीदने के लिए, तो फिर मैं क्या करूंगा। क्रिटिसिज्म, प्रेमविलास प्रभु ऐसे है, प्रेमविलास प्रभु वैसे है, उन्होंने ये कमी, उन्होंने अमित प्रभु ने क्या बात, सही में मुझे तो पता ही नहीं था प्रभु ये ऐसी बात है। बोले हाँ ऐसी बात है, आपको नहीं पता? हाँ नहीं पता, कोई बात नहीं। आपको डिसाइपल कोर्स किया होता है ना, उसके अंदर ये सब आता था शायद आपको। तो ये इस तरह से वो सेल्फ पर इंटरेस्ट करने, अपने स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए जो क्रिटिसिज्म की जाती है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, विनाशकारी निंदा है। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होती है उससे आध्यात्मिक लाभ होता है। जैसे गुरु अपने शिष्य को क्रिटिसाइज करता है तो गलत नहीं है, दैट्स फाइन। हाँ बोलिए।
व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो दूसरा तरीका है। व्यवहारिक दृष्टि देखा जाए तो जब भी हमें कोई नुकसान होता है, कुछ विद्युति होती है, कोई और चीज लॉस होता है, सेपरेशन होता है, कुछ भी अगर संभल के देखो तो खुद ही उसके कारण होते हैं। जैसे कोई किसी को पीट दिया किसी ने, तो वो कमजोर था इसीलिए तो पीट गया। यहाँ व्यवहारिकता की बात कर रहा हूँ। अगर कोई छह फुटा साढ़े छह फुटा पहलवान जा रहा है, उसको कौन पीटने जाएगा? कोई नहीं पीटने, कमजोर कोई लोग पीटते हैं। पैसा धोखा, आप धोखा तो खाते हो जब किसी को भरोसा करते हो ज्यादा, ये अपनी वो सुरक्षा की पूरी चीज नहीं करते। तो व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति खुद ही जिम्मेवार है, बट अपनी कमी ना देख के वो दूसरों को ब्लेम करके उनको दोष लगाने के लिए तैयार
है। यस, और यही सब जगह चलता है, यही सब जगह चलता
है। हर जगह यही है कि वो गलती गलती खुद की है।
यस,
खुद ही अपने आप उतनी मेहनत नहीं करेगा या उतनी सुरक्षा के नियम नहीं पालेगा या उस तरह से व्यवहार नहीं करेगा।
प्रभात कहते थे हमेशा, आप रात को घर दरवाजा खुला छोड़ के सो जाओ और सुबह चोरी हो जाए तो इसमें हम, इसलिए कई बार कुछ लोग ऐसा दोष देते हैं कि कृष्ण भावना में स्वीकार करने के पश्चात भी इस भक्त का पतन हो गया है या इस भक्त में समस्या है, इस भक्त की क्वालिटी 20 साल हो गया फिर भी ये ईर्ष्या करता है, 20 साल का फिर भी ये द्वेष करता है। ये सब चीज अगर आपको पाई जाती है, हालांकि वो तो गलती है, लेकिन आप खुद देख रहे हो ऐसा हो रहा है, तो फिर कई लोग इसको दोष देते हैं कि कृष्ण भक्ति कमजोर है। तो प्रभुपाद इसके सामने एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप दरवाजा खुला रख के छोड़ जाओ तो फिर क्या होगा, चोरी होगा ही ना। तो इसी तरह से अगर उस भक्त ने इतने सालों के अंदर दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था कि कभी भी उसका नुकसान हो सकता है, उसने खुद ही ध्यान नहीं रखा है अपने आध्यात्मिक जीवन का, तो इसके लिए कृष्ण भक्ति कैसे जिम्मेदार है? भक्ति की प्रोसेस गलत नहीं है, जो साधक है उसने उसका अप्रोच गलत है। दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दवाई लिया नहीं इसके लिए प्रॉब्लम है। यह
तो परम विज्ञान है।
यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देयर आर पीपल हु ब्लेम दिस, बट बिकॉज इट इज प्रॉब्लम विद अस, इज नॉट प्रॉब्लम विद द लॉर्ड।
गलती बिजली की नहीं, कंडक्टर की गलती है।
यस,
इस लायक ही नहीं है कुछ कैमरा से करंट पास करते।
यस, दैट्स दैट। यस, सो टेक्स्ट नंबर कौन सा है?
30
पढ़िए।
जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है।
यहाँ पर क्या लिखा है? One who can see that all activities are performed by the body which is created of material nature and sees that self does nothing actually sees। अर्थात कर्म जो होते हैं वो शरीर के माध्यम से किए जाते हैं, लेकिन आत्मा वो केवल इच्छा प्रस्तुत करता है, बाकी कर्म शरीर के माध्यम से होता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, टेक्स्ट नंबर 21 को कनेक्ट करके आप देख सकते हो। आई द सोल एम द कॉज ऑफ वेरियस सफरिंग्स एंड एंजॉयमेंट बट आई डू नथिंग, ओनली मटेरियल नेचर एक्ट्स। कौन सा है? प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणि अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो अहंकार से विमूढ़ आत्मा जो होता है वो अपने आप को कर्ता मान लेता है। तो इस तरह से ध्यान से देखा जाए तो प्रकृति के 3 गुण हमें करवाते, सिचुएशनल है ये। सिचुएशन में आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो देन यू डू दैट, आप उस तरह से कार्य करते हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता, कितना बड़ा प्रपट है, पढ़िए।
यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है, इस तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है।
देखा ना, यहाँ पर वो यंत्र यंत्र के रूप में काम करता है। आपका जो मटेरियल इच्छा है वो सिचुएशनल का प्रभाव है। जैसे हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि मनुष्य को लगता है कि वो टीवी देख रहा है, हाथ में रिमोट लेके बैठ जाता है और वो टीवी को कंट्रोल कर रहा है, यू नो, उसमें चैनल बदलता रहता है। तो ध्यान से देखोगे तो मनुष्य टीवी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, टीवी मनुष्य को कंट्रोल कर रही है। Isn't it? उसको ऐसा लगता है कि वो टीवी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो टीवी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली टीवी मनुष्य उसको कंट्रोल कर रही है। कैसे?
उसकी इच्छा है कि ये देखना है, को ये देखना
है ना? और एक के बाद एक अलग अलग चीज आती रहती है उसके ऊपर और उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको पकड़ के रखते है।
मैं देखा था सोशल मीडिया पे कि मतलब पिक्चर है, उसने लिखा है कि वो मतलब कोई कार्टून है, वो बात कर रहा है इंटरनेट से, आई एम यूजिंग यू बिकॉज यू आर फ्री, नो आई एम यूजिंग यू बिकॉज यू आर फ्री।
दिस अबाउट डेटा,
नो इट्स अबाउट यूजिंग इंटरनेट।
ओह, यूजिंग इंटरनेट,
इंटरनेट इज फ्री, इंटरनेट इज सेइंग नो आई एम यूजिंग यू बिकॉज यू आर फ्री।
यस, दैट्स ट्रू। आप समझे, आजकल सारी टेलीकॉम कंपनियां जो है उनका मार्केटिंग का जो नंबर वन हथियार है वो है डेटा, नंबर वन। वो कौन कितना डेटा ज्यादा देता है वही एक ही, देयर इज ओनली पॉलिसी। अगर इसको भी अगर सारी जो पॉपुलेशन है लोगों ने अगर इसको भी डिस्करेज कर दिया तो इन लोग का कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचेगा ही नहीं, क्या देंगे वो? सब कुछ अनलिमिटेड कर दिया, अब डेटा एक बचा है जिसमें 10 GB 20 GB 5 GB। बट एक्चुअली ये बात सही है कि ये नवरे जो फ्री लोग है, निकम्मे लोग है, जिसको कोई काम धंधा नहीं है, वही इसके और एंड दे आर प्रमोटिंग, आई मीन पीपल आर सो इडियट। ये वो लोग 10 GB 20 GB 30 GB करेगा क्या भाई इतना 40 GB डेटा का? हमिश, तो हमारा पैसा हमारी जेब भरते रहो बस, अपना खुद का अपना जेब खाली करो।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली गाइड्स यू, जैसे आप जो भी तरह की वो मॉनिटर करता है, जैसे आप यूट्यूब पे कोई देखते हो तो फिर जैसे अगर मैं अगर इस्कॉन की वीडियो देखता हूँ तो वो इस्कॉन की वीडियो सजेस्ट करेगा।
हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत होता है, क्योंकि वो आपकी सारी कुकीज, इंटरनेट का सारी कुकीज जो होती है वो सब चेक करता है। और आप जो यूज करते, फेसबुक में भी ऐसा है, आप जो कुछ भी यूज करते आपका जो ट्रेंड है, आप तो गूगल भी बहुत स्मार्ट है। गूगल में क्या होता है कि मैं देखा है, अगर मैं अभी देखा कि अगर मुझे AC लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सर्च किया कि कौन सा अच्छा ब्रांड है AC का, बस उसके इमीडिएटली दूसरा सर्च आप करो तो AC के रिलेटेड ही सारे खुलेंगे, सारे ऑप्शन आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग यू, यू आर नॉट कंट्रोल देम, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जाम्पल, दूसरा एक एग्जाम्पल भी हम आपको दे सकते हैं कि अगर समझ लो कि आपको वैकेशन के लिए जाना है, वैकेशन के लिए जाना है, वैकेशन के लिए आप किसी एजेंट के पास गए तो सबसे पहले तो बोलेगा कि भाई वैकेशन के लिए जाना है, विदेश जाना है। अच्छा, विदेश जाना है, ठीक है, तो पैकेज बताएगा, ये पैकेज है, वो पैकेज है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का पैकेज है, ये मॉरिशस का पैकेज है, ये यूरोप का पैकेज, ऐसे पैकेज। आपका बजट कितना है? बोले मेरा बजट है 3 लाख रुपया। तो वो क्या करेगा, जो जितने भी पैकेज है उसमें से आधे साइड में रख देगा, फिर बताएगा ये तुम्हारे सामने इतने पैकेज है, ये तुम्हारे बजट में आ जाते हैं, राइट? आप पैकेज लिया, आप चले गए प्लेन के अंदर, तो प्लेन में आप टिकट लिया, बोर्डिंग पास बन गया, बोर्डिंग पास लेकर के अब बोर्ड किया प्लेन के अंदर, आप अंदर चले गए और आपकी फ्लाइट समझ लो कि यहां से अमेरिका की है 18 घंटे की, अब 18 घंटे चले गए प्लेन के अंदर। अब प्लेन के अंदर आप जैसे गए दरवाजा बंद, दरवाजा बंद हो गया, अब दरवाजा खुलेगा नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, आपका जब नेक्स्ट डेस्टिनेशन वहां दरवाजा खुलेगा, आप अंदर चले गए। अब आप अपनी सीट पर जाके बैठ गए, बैठने के बाद अभी आपको जूस मिलेगा, खाने को मिलेगा, आप खिड़की में से देख सकते हो, आपके सामने एक छोटा सा मॉनिटर होता है छोटा सा, उसमें आप गेम खेल सकते हो, मूवीज देख सकते हो, यू नो इसके अंदर आपको सब आपका पर्सनल वो सब रहता है, आप जो करना है, आपको थोड़ा नींद आ रहा है तो आप सो सकते हो, जो करना है कर सकते हो, राइट। तो उसको मैं कितना फ्री हूं, आई एम सो फ्री, बट एक्चुअली यू आर नॉट फ्री, आप प्लेन के अंदर बंद हो, आप प्लेन से बाहर नहीं जा सकते, इज़न्ट इट। आपकी चॉइस उसी के अंदर है, आप ज्यादा से ज्यादा आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अब मुझे प्लेन के विंग के ऊपर बैठ के सफर कर रहे हैं,
दाल चावल खाना है तो वो नहीं है
मेनू में,
तो नहीं मिल सकता।
और बड़े स्माइल से कहेंगे सॉरी सर आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है दाल चावल। सो आई मीन आपको लगता है कि मैं बड़ा फ्री हूँ, यू नो आई कैन, देखो मैं जो मूवी देखना चाहूँ देख सकता हूँ, मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे कभी भी बाथरूम आता है तो मैं खड़ा होकर बाथरूम जा सकता हूँ, एवरीथिंग इज देयर, बट यू आर कंट्रोल बाय एयरलाइन, आप एयरलाइन के द्वारा कंट्रोल किए गए। और ये तब ये कब पता पड़ता है, जब आपको ये समाचार प्राप्त हो जाए कि आपका प्लेन हाईजेक हो गया है। तब आपको पता पड़ता है कि आपकी स्वतंत्रता कितनी है। इधर ही
समय चुरा लेता।
हाँ जी
समय चुरा लेता है।
हाँ समझ चुका था। आई मीन द पॉइंट इज कि वास्तव में हम ऐसा मानते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, लेकिन हम नहीं कंट्रोलर हैं, वो हमें कंट्रोल कर रहा है।
अपना जो दूसरा काम रहता है वो हम भूल जाते हैं और टीवी देखते रहते हैं, दूसरा काम साइड में ही रह जाता है।
यस, तो कंट्रोल तो प्रकृति के तीन गुण हमें कर रहे हैं, हम क्या उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्रकृति के तीन गुणों के विषय में ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। देयर वाज टेक्स्ट नंबर 30। या ओके, सो टेक्स्ट नंबर 31।
जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह दिखता है कि इस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त करता है।
सो जब समझदार व्यक्ति सेंसिबल में है तो वो सीज डिफरेंट identities due to different material bodies and he sees our beings are expanded everywhere, he attains the Brahman conception. अर्थात शरीर जो भी है हमारे, ये सारे शरीर एक दिन तो काम करना बंद करने ही वाले हैं, एक दिन तो खत्म, ये शरीर काम करना बंद करेंगे। इसलिए वास्तव में हम एक व्यक्तिगत आत्मा है और हमारा एक अपना अस्तित्व है, शरीर का है अस्तित्व लेकिन वो हमेशा जितना आत्मा का है उतना नहीं है। समझ लो कि आप यहां से पैसेंजर आपका बोगी, ट्रेन में का बोगी नंबर है S2 और सीट नंबर है 20 फॉर एग्जांपल। तो अभी आपकी आइडेंटिटी क्या है, S2 का 20 नंबर, वो आपकी आइडेंटिटी। लेकिन वो आइडेंटिटी कब तक है, जब तक आपका स्टेशन नहीं आ जाता है। लेकिन आप तो अस्तित्व तो बनाए रखोगे ना, आप भी उसके साथ खत्म हो जाएंगे क्या, नहीं, आप तो उतर जाओगे स्टेशन से, यू कंटिन्यू, लेकिन दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब तक आप अंदर थे तब तक आप 20 नंबर के पैसेंजर थे। सो हमारा अस्तित्व है वो तो हमेशा रहेगा, इसलिए आत्मा और परमात्मा को क्षेत्रज्ञ के साथ कोई लेना देना नहीं है, सॉरी क्षेत्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब ये व्यक्ति कोई समझता है तभी वो ब्रह्म कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। क्या हुआ इसका अर्थ, मेरा ये शरीर के साथ संबंध जो है वो टेम्पररी है, लेकिन ये शरीर के साथ उसके अस्तित्व से मेरे अस्तित्व का कोई संबंध नहीं है। जब मैं इसको समझ पाऊंगा कि मैं इससे बिल्कुल अलग हूं तभी मैं ब्रह्म को समझ पाऊंगा। जब ये समझ पाऊंगा कि परमात्मा का इस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है तभी मैं समझ पाऊंगा वास्तविकता, तभी फिर वो ब्रह्म रियलाइज हो पाएगा। एक्चुअली बात सेकंड चैप्टर में जो बताई थी उसके जैसी है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ टेक्स्ट नंबर 32 में बताया गया है जो ब्रह्म दृष्टिकोण से देखता है, जिसके पास ब्रह्म दृष्टि है, ऐसा व्यक्ति क्या देखता है?
शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देखते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है।
आप समझिए जो प्रॉब्लम है हमारी तीन गुणों के कारण है, आत्मा के कारण नहीं है। हम आत्मा इस प्रकृति के संसर्ग में आते हैं और तीन गुणों के प्रभाव में फंस जाते हैं और इसके कारण हमें अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं और वो शरीर जैसे हमारे हाथ और पांव बांधे हुए गुणों ने और हमें कभी नचाते सत्व गुण में, कभी नचाते रजोगुण में, कभी नचाते तमोगुण में। और आत्मा अंदर शरीर के अंदर जो हम है, हम ऐसा सोच रहे कि ये काम मैं कर रहा हूँ और ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, अर्थात मैं ही करता हूँ, या फिर वो अपनी पहचान शरीर के साथ कर रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, यहाँ पर वो फंस जाता है। लेकिन जब ये समझता है, जो ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त है, वो ये समझता है कि मेरा इस शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति नहीं फंसता। यहाँ पर केवल शरीर ही बदलता है, आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, हम वही के वही रहेंगे। यस,
ये जो ये तीन श्लोक जो ये पहला वाला श्लोक और ये सब, तो ये जरूरी नहीं है कि जो वैष्णव है उनके लिए ही है ये बात, ओवरऑल ब्रह्मवादी है और सभी के लिए, जो जो सांख्य योग मतलब सांख्य योगी है कि उनके लिए सभी के लिए।
या एक्चुअली क्षेत्र क्षेत्र ये हर एक लेवल पे ये इसके रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है। आज एक भक्त ने मुझे पूछा था सुने कि यहाँ पर ये शरीर आत्मा का जो सेकंड चैप्टर में जो आप आते हैं ना, सेकंड चैप्टर में हम बता रहे थे शरीर और आत्मा का अंतर के विषय में, तो ये यहाँ पर इसकी क्या आवश्यकता है, सेकंड चैप्टर में ये क्यों बताया गया है, इसका कनेक्शन कैसे है, वो ऐसा पूछ रहे थे कि यहाँ पर युद्ध की बात हो रही थी और अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था, तो यहाँ पर ये आत्मा शरीर की बात कहाँ से आ गई बीच में, ऐसा उनका प्रश्न था। तो फिर मैंने उनको समझाया, उनको बताया कि द्रोण और भीष्म के शरीर को अर्जुन देख रहा था, आत्मा को नहीं देख रहा था, इसलिए फिर भगवान को बताना पड़ा, बाकी वो नहीं बता तो चलता, लेकिन बताना पड़ा, अब क्या करे, बताना पड़ा तो फिर बता ही दिया, तो ये आप भी समझ लो, आप भी सुन लो लाइक दैट। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान वही चीज को दूसरे तरीके से बता रहे, डिफरेंट वे, सेम वस्तु लेकिन दूसरे तरीके से बता रहे।
ये बात ऐसे तो समझ में आ जाती है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ज्यादातर सब लोग फंस जाते हैं, क्योंकि अगर कोई फायदा होता है या लॉस होता है तो अटैचमेंट तो हो ही जाता है, उससे बचने का जो चांसेस है बहुत कम रह जाता है, खासकर जो सिंसियर डिवोटी है वही उसमें से बच जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चार दिन तक तो मैं फंस ही गया, मैं डिस्टर्ब ही रहा, चार दिन के बाद मैं बाहर आ पाया, तो कई लोग मेरा तो चार दिन है, कई का 40 हो जाता है, पूरा लाइफ चला जाता, तो ये सब होता रहता है। ये जानने के बाद ही कि हम आत्मा है शरीर में, मतलब अटैचमेंट डिसअटैचमेंट तो पूरी लाइफ अपनी फाइट चलती ही रहती है, उसमें से हम बाहर नहीं निकल पा रहे।
ये हो सकता है, ये आसान है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके केस में अगर जो चार दिन वाला जो सिस्टम है वो तो अच्छा कि आपने बहुत ही ऑनेस्टली बता दिया, लेकिन जो चार दिन वाला जो था उसमें पहले ही दिन अगर आप किसी शास्त्र में से या किसी प्रभुपाद के बुक्स में से या फिर किसी भक्त के साथ इसके ऊपर अगर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते वो तो चार दिन आपका बच जाता। अभी आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल कि वो तो एक दिन था, अभी रोज ऐसा होगा तो क्या रोज हम भक्तों को परेशान करेंगे? तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए कि आपका जो रेगुलर एसोसिएशन होता है वो अगर सॉलिड हो जाए देखो इम्प्रूवमेंट का स्कोप सब जगह होता है, अच्छा तो और हो ही सकता है, तो जब और थोड़ा अच्छा हो जाए तो इससे क्या होगा कि फिर वो चीज आपको पूछनी नहीं पड़ेगी, वो चीज आप खुद समझ लो थियोरिटिकल, तो एटलीस्ट वो थियोरिटिकल काम कर जाएगा, प्रैक्टिकल अभी आने में टाइम लगेगा, थियोरिटिकल आप समझ ले लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा टाइम लगेगा, यदि एटलीस्ट आप थियोरिटिकल समझते हो तो आप अपने आप को बैलेंस कर पाते हो, भले मैकेनिकली सही लेकिन अपने आप को बैलेंस कर पाते हो, तो ये चीज वो प्रैक्टिकल कब आएगा, ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एक साल दो साल पांच साल के प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो अपने आप आ जाएगा, ड्यू आफ्टर प्रैक्टिस वो आ जाएगा फिर।
इसीलिए तो आपने पहले भी बताया था कि अभ्यास 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 ही अभ्यास तो घूमते गए या गिरे चले जाते, अभ्यास योग युक्त है ना, शुरुआत के पहले छह अध्याय में तो अभ्यास 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 ही करना,
प्रैक्टिस करना पड़ता है, मन मेरा भाग जाता है,
रिएक्शन टाइम कम हो जाता है,
लेकिन आप मन भागेगा लेकिन प्रैक्टिस करने से नहीं भागेगा,
तो रिपीटेशन मदर ऑफ लर्निंग, प्रभुपाद जी ने कहा रिपीटेशन मदर ऑफ लर्निंग, तो अभ्यास करते रहेंगे तो रिएक्शन टाइम, जैसे किसी का मेरे तो एक साल का होगा, आपका तो 40 दिन का होगा, तो साल का होगा तो 11 महीने करते करते हो सकता है इंस्टेंट,
इनका तो 40 दिन हो गया, अभी कुछ समय के बाद इनका 1 दिन हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद आपका 4 मिनट हो जाएगा, और कुछ समय के बाद फिर इंस्टेंट,
जैसे इंस्टेंट हो गया बस दोनों बेहतर हो गया।
So like that. और उससे भी थोड़ा आगे फिर वो अडियोडी प्रोडक्टिव हो जाएगा, घटना बनने उससे पहले ही वो अपने आप को संभाल लेता है, कोई इंसिडेंट बने उससे पहले ही अपने आप को सेव कर लेता है, तो दैट इज प्रोएक्टिव। तो जैसे आप अधिक संसर्ग में आते हो, देखो मेरा तो एकदम सिंपल लॉजिक है, मुझे जहां से अगर कुछ अच्छा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है तो मैं तो उसका लाभ ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ, मुझे पता पड़ना चाहिए कि आध्यात्मिक लाभ मुझे हो रहा है, तो मैं उसको छोड़ता नहीं फिर क्यों। जैसे हमने एक बार आपका एग्जांपल लिया था, पानी अपना मार्ग को ढूंढ ही लेता है कि उसको जाना है, तो उसको बोलना नहीं पड़ता पानी को कि देखो इधर दरवाजा, इधर से चले जाओ बाहर, है ना, उसको बोलना नहीं पड़ता। इस तरह से जो भक्त को कृष्ण भावना उसमें आगे बढ़ता है वो अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है, उसको बोलना नहीं पड़ता कि आप ये करो वो करो, अपने आप मार्ग ढूंढ ही लेता है, उसको बस पता पड़ना चाहिए कि कहाँ से मेरा आध्यात्मिक लाभ हो रहा है, तो इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो अगर आध्यात्मिक परिवर्तन प्रगति करने के लिए और आप शास्त्र गुरु साधु शास्त्र के डायरेक्शन के अंदर हो तो आप गलती नहीं कर रहे हो। आप कुछ कह रहे थे?
हाँ, तो ये जैसे कि केंद्र एक अगर है तो उसी तरफ किसी भी डायरेक्शन से पहुंचे, जैसे पानी में आपने थोड़ी बताया कि पानी भी पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाना चाहता है, तो जहां से मौका मिलेगा वो उधर ही जाएगा, जहां भी वो नजदीकी बनेगी, चाहे वो 1 फीट नजदीकी हो केंद्र से। और अगर जैसे आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे केंद्र है, तो किसी भी डायरेक्शन से जब भी कोई रास्ता मिलेगा हम उसी तरफ जाने की कोशिश,
तो हमें उसी तरह से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी तो मुझे गुरुजी ने मुझे बोला नहीं है, तो गुरुजी क्या आपको हर बार आपको आके बताएंगे, लिख के देंगे क्या कि आपको ये सब करना है? गुरुजी ने आपको बताया कि आपका अंतिम लक्ष्य ये है तो उसको फॉलो करो, दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट। हर एक चीज के लिए डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, ये विचार है। सो दैट्स वेरी गुड पॉइंट। सो टेक्स्ट थर्टी थ्री, तो अभी क्या है? शरीर जो आत्मा शरीर के भीतर है तो क्या वो दो एक हो सकते है या नहीं? तो टेक्स्ट नंबर 33 पढ़िए।
यद्यपि आकाश सर्वव्यापी किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता।
बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भगवान ने दिया है। इस कमरे में आकाश है कि नहीं है, है ना? लेकिन इस कमरे से लिप्त नहीं हुए वो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक मुट्ठी बंद कर दो तो मुट्ठी के अंदर आकाश है कि नहीं है, ना? और जैसे आप मुट्ठी खोल दो तो आकाश को कोई लेना देना है? मुट्ठी बंद है या खुली है, ये कमरे के अंदर है या कमरे के बाहर है, आकाश को कोई लेना देना नहीं। इस तरह से आकाश सभी जगह है, हर जगह है, सब जगह है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आकाश को अगर कोई जाके पूछेगा भी कि तुम्हें इस कमरे में कैसा लग रहा है, तो आकाश क्या कहेगा, बोले मैं तो हजारों कमरे में एक साथ हूँ, मैं तो कमरे के बाहर भी हूँ, मैं सब जगह हूँ। इस तरह से आत्मा जो है वो शरीर के भीतर होते हुए भी शरीर के साथ उसका कनेक्शन नहीं है, अर्थात वो शरीर के द्वारा शरीर से वो प्रभावित हो कंबाइन नहीं है, एक नहीं हो गया शरीर से, वो अलग ही रहेगा। हालांकि वो शरीर का सारा उपयोग कर रहा है लेकिन वो एक नहीं हो जाता, कंबाइन नहीं हो जाता। जैसे हरा तोता पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया तो फिर वो अब गायब हो गया हरा तोता, सब पेड़ हो गया, ऐसा नहीं होता है, नेवर हैपेंस। तो शरीर अलग ही रहेगा, आत्मा अलग ही रहेगा, शरीर रहेगा फिर भी आत्मा अलग है, शरीर नहीं रहेगा फिर भी आत्मा अलग है।
और अगर उसका हिस्सा होता तो शरीर बात के समय उसका भी अस्तित्व नष्ट हो जाता।
हाँ, फिर वो उसका उसको भी खत्म करना पड़ता, लेकिन ये तो चेतन वस्तु है, इसका ये हो नहीं सकता। इसलिए हमारी प्रॉब्लम क्या कि हम मिस आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने आप से। हमारी प्रॉब्लम यही है कि मैं अपने आप को शरीर बोलता हूँ और यहीं पर मैं अटक जाता हूँ कि मैं अपने आप पहचान शरीर के साथ कर रहा हूँ। सो नाउ टेक्स्ट नंबर 34 में दूसरा एक एग्जांपल है।
हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है।
सूर्य एक ही स्थान पे है लेकिन सारे संसार को प्रकाशित करता है, तो आत्मा एक प्रकार से जो चेतना है, कितना सूक्ष्म कण, कितना छोटा सा बिंदु है आत्मा, 10,000 पार्टिकल, बाल के अगर भाग का 10,000वां हिस्सा, इतना सूक्ष्म है। लेकिन आप सोचिए कि भगवान का अंश होने के कारण कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है कि वो ब्रह्मा बनकर के सारी सृष्टि का सर्जन कर सकता है। जीवात्मा इंद्र बनकर के बारिश बरसा सकता है,
रुद्र बन के सबका नाश भी कर सकता है।
रुद्र, हाँ, रुद्र तो चलो रुद्र जीव तत्व में नहीं है, वो तो शिव तत्व है, लेकिन फिर भी भगवान अलग अलग जीवात्मा के शक्ति देखो। चलो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात हमने कर दी, ब्रह्मा जी और ये तो, अब मैं अपनी ही बात कर लो, तो हमारे शरीर में चेतना है, वो चेतना उस छोटे से कण के कारण है, सूक्ष्म कण के कारण इतना सारा प्रभाव है उसका, सो एनर्जेटिक, इतना प्रभाव है उसका। तो ये आत्मा, ये सूर्य की एग्जांपल भगवान दिए है, तो सारे बॉडी को चेतना देता है वो। ये भगवान दूसरा एग्जांपल दे दिया साथ साथ में। तो टेक्स्ट नंबर 34 था ये 34, नाउ द लास्ट वर्स इज समरी।
हाँ, इसमें क्षेत्री भी है,
क्षेत्र
क्षेत्री, तो क्षेत्र की अगर सिमिलर सिनोनिम है, आत्मा होता है
एक, तो हिंदी वाला करते कुछ ना कुछ,
क्षेत्री का देही है वैसे ही, क्षेत्र
क्षेत्री क्षेत्री हवाई मतलब
क्षेत्री
सिनोनिम,
क्षेत्री क्षेत्र के जैसे देह हो गया, देही हो गया, ऐसे क्षेत्र क्षेत्री।
हाँ, दैट्स फॉर आई मीन, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड होगा लेकिन यहाँ पर क्षेत्री यूज किया है,
क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण,
ये संस्कृत वाला। हाँ, क्षेत्री जो क्षेत्र के प्रभुपाद, प्रभुपाद का सिनोनिम क्या है,
आत्मा,
आत्मा क्षेत्र क्या,
क्षेत्रीय वही आत्मा,
क्षेत्र का
मुझे
बता नहीं
था,
क्षेत्र क्षेत्र के दो ही चीज
है,
क्षेत्री भी
है। सो अंत में एक श्लोक में पूरे चैप्टर का समरी पढ़िए।
जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है।
हाँ, सो ये चैप्टर का टाइटल है प्रकृति, पुरुष और चेतना। ये भौतिक प्रकृति को बता रहा है, परमात्मा और आत्मा के विषय में बता रहा है। अभी तात्पर्य पढ़िए, इसका पूरा समरी प्रभुपाद ने संक्षिप्त में बताया है तात्पर्य।
इस पूरा इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संग गति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इस 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले।
प्रभुपाद यहाँ लास्ट लाइन में भी ये चीज बताया फिर से कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो जब मैंने ये पढ़ा था तभी मैंने यही बात सोचा कि एक बार यशवंत नंदन प्रभु के पास गया था, मैंने कहा कि इसका क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद के तात्पर्य के बिना इस अध्याय को कोई समझ नहीं पाएगा, बिना तात्पर्य को आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ पर जो है वो उसका काम करते हैं समझ। और उसके अलावा फिर आपकी जो एकेडमिक सिस्टम है इस सिस्टम से आप समझ पाते हो कि 13वां अध्याय में। नाउ क्वेश्चन ओके, वी कैन गो फॉर स्मॉल एक्सरसाइज। तो एक एक्सरसाइज हम करते हैं।